Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वणक्कम, सुस्वागतम, पधारो इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, जिस भी भाषा में, जिन शब्दों में आप एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं, उन्हीं भाषा में और उन्हीं शब्दों में हमारा भी अभिनंदन स्वीकार करें। मैं तो सोचता हूँ कि आप जिस भी भाषा का प्रयोग करते हैं और अभिनंदन के लिए जिन भी शब्दों का प्रयोग करते हैं, यदि मुझे पता हो तो जरूर उन सभी शब्दों का इस्तेमाल मैं करूँ, क्योंकि जैसे आप हमसे बेहद प्यार करते हैं, वैसे ही हम भी आपसे बेहद 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 प्यार करते हैं। और हम जानते हैं कि आप इस कार्यक्रम से भी बहुत लगाव रखते हैं, प्यार करते हैं, इसीलिए समय होते ही आप अपने टीवी सेट के सामने बैठ जाते हैं। मित्रों, सच मानिए, हमारा भी आपसे बेहद प्यार है, इसीलिए बार बार या कहूँ रोज रोज हम आपके घर चले आते हैं आपसे दुआ सलाम करने के लिए, और साथ ही लिए आते हैं आपकी समस्याओं का समाधान। चाहना तो ये रहती है कि आपके पास कोई भी समस्या ना रहे, लेकिन यदि समस्या है भी तो हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो दूर हो और आपके चेहरे में एक प्यारी सी मुस्कान हेलने लगे, क्योंकि जब चेहरे पे मुस्कान आती है तभी जीवन का संपूर्ण आनंद आता है, और यदि चेहरे में उदासी होती है, निराशा होती है, तो खुद को भी अच्छा नहीं लगता और साथ ही हमारे परिजनों को भी अच्छा नहीं लगता। तो आइए पुनः हम समाधान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपके पास कोई भी समस्या ना रहे, बल्कि आप समाधान स्वरूप होकर के रहें और आपके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान सदा खेलती रहे। अभिनंदन करते हैं आइए प्राता जी का। प्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
थैंक्स।
प्राता जी, एक विशेष बात रहती है कि जब समस्या होती है चेहरे पे तो शायद चेहरे पे 12 बज जाते हैं, लेकिन यदि समाधान स्वरूप रहते हैं तो चेहरा खिला रहता है और शायद उस खिले हुए चेहरे को ही सभी पसंद कर।
बिल्कुल सत्य बात यही है, और एक समय इस सृष्टि पर ऐसा ही था
जी।
एक समय क्या, एक लंबा काल गुजरा है जहाँ कोई समस्या थी ही नहीं मनुष्य के जीवन में। द्वापर युग के प्रारंभ से बहुत थोड़ी थोड़ी समस्याएं थी, वो भी स्वार्थ के लिए, गद्दी पाने के लिए लोग संघर्ष करते थे। परंतु अब जबकि कलयुग का अंत आया है, मनुष्य की स्पिरिचुअल पावर बिल्कुल समाप्त हो गई है, उसके अंदर नैतिक मूल्य, चरित्र, प्योरिटी, शक्तियाँ ये सब लगभग लोप होते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हर छोटी बात समस्या लगती भी है और मनुष्य कभी कभी समस्या क्रिएट भी करता रहता है। बहुत जगह हमने देखा, जैसे कल परसों हम चर्चा कर रहे थे कि अनेक समस्याएं मनुष्य के स्वभाव संस्कार से पैदा हो रही हैं, कि एक के बोल केवल बोल समस्याओं को बढ़ावा दे रहे हैं, एक का अहंकार समस्याओं को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं तो देखता हूँ जो भी कैसे जाते हैं, सास का या बहू का अभिमान परिवारों को तोड़ रहा है, हम साथ रहेंगे नहीं कुछ भी हो जाए, मतलब वो अपने उस अहम को छोड़ने को तैयार नहीं, एक दो को छोड़ने को तैयार रहते हैं। तो इन सब के लिए जरूरत है स्पिरिचुअल पावर की, और हमें एक ऐसा अपना लाइफ स्टाइल बना लें कि हर बात समस्या न बने, समस्या न लगे।
आपने वाणी की बात कही ब्रदर जी, कहीं मैं एक स्लोगन पढ़ रहा था, बड़ा सुंदर लगा मुझे, मुझे लगा आपसे भी मैं इसकी चर्चा करूंगा। स्लोगन ये था कि पानी यदि मर्यादा तोड़े तो विनाश, और यदि वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे और लगा कि सचमुच इस पे बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। वाणी पे व्यक्ति ध्यान नहीं देता और ध्यान नहीं देता इसलिए सर्वनाश होता है परिवारों का।
बिल्कुल, पानी का जो विनाश है वो तो कहीं ना कहीं भरपाई हो जाती है
जी।
और अगर उसको फिर से ठीक दिशा मिल जाए तो वो भी चलने लगता है अपनी राह, लेकिन ये वाणी ऐसी है कि जिस मनुष्य की बिगड़ी हुई होती है वो बिगड़ी रहती है, और इसके पीछे मनुष्य का अहम, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत या बदले की भावना, इनसे प्रेरित होकर वाणी निकलती है। तो ये वाणी सचमुच परिवारों को और व्यक्तिगत जीवन का भी, जो उसकी खुशी है, शांति है, सुख है, उसका भी सर्वनाश कर रही है। ये हम रोज देख रहे हैं, जिस परिवार की व्यथा सुनो, गाथा सुनो, बस लगभग ऐसी होती हैं। कहीं कहीं थोड़े और कारण भी दिखाई देते हैं, इसलिए एक समझदार मनुष्य को चाहिए कि प्रभु ने हमें वाणी दी है, सुखदाई बोल बोलने के लिए। कितना अच्छा हो कि हमारे मुख से अमृत निकले, धुआं कभी ना निकले। कईयों के मुख से काला धुआं निकलने लगता है, घुटन हो जाती है सबको, लेकिन हमारे मुख से अमृत की बरसात हो। जैसे होली पर सभी ने पिचकारी से रंग डाले ना, देखो पिचकारी पहले छोटी निकलती है धार, फिर फैलती नजर आती है ना, वैसे ही हमारे मुख से ऐसे बोल निकले, किसी पे वरदानों की पिचकारी पड़े, किसी पे आशीर्वादों की पिचकारी पड़े, किसी का चित्त उस पिचकारी से शांत हो जाए, किसी को सुख मिलने लगे। ये रंग बिरंगी पिचकारी हमारे मुख से भी निकल सकती है जो अति सुखदायी हो। तो एक समझदार मनुष्य को अपने बोल को अच्छा रखना ही चाहिए। देखो अच्छा बोलने में जाता भी क्या है,
वाणी की बात हमेशा ऊपर नीचे थोड़ी सी हो ही जाती है व्यवहार में आते हैं तो। लेकिन मैंने यहाँ देखा है, जब से मैं आता हूँ ऑब्जर्व करता हूँ, तो विश्वविद्यालय के जो भाई बहने हैं, ब्रह्म कुमारीज में जो आते हैं भाई बहने, उनकी वाणी बहुत ही संयमित रहती है, संतुलित रहती है, मिठास से भरी हुई होती है। और कभी भी मैंने उनको अपशब्दों का प्रयोग करते हुए नहीं देखा है या जोर से बोलते हुए नहीं देखा है। तो लगता है कि यहाँ ऐसी क्या बात है, क्या ट्रेनिंग दी जाती है। यदि ये ट्रेनिंग सबको दे दी जाए तो घर के सारी समस्याएं, सास बहू वाली समस्याएं विशेष जो आप कह रहे थे, दूर हो जाएंगे।
देखिए सुनते सुनते पत्थर भी पिघल जाता है ना, पत्थर पे भी धार पड़ती रहे तो आखिर उसमें भी
गड्ढे जैसा हो ही जाते हैं,
उसका शेप अच्छा हो ही जाता है। तो हमारे यहाँ क्या, रोज सवेरे योग अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य को एक बहुत सुखद फीलिंग होती है। और जब मनुष्य स्वयं सुखी रहता है तो वो दूसरों को सुख देना अवश्य चाहता है, क्योंकि वही उसके पास है। रोज सवेरे यहाँ सभी परमात्म मिलन का आनंद लेते हैं, तो एक बहुत अच्छी जागृति सवेरे सवेरे होती है। आज मनुष्य को जिसकी बहुत जरूरत है, आत्म जागृति, उसके सद्विवेक की जागृति, उसको सत्य ज्ञान के ये विकार विष के समान है, अमृत तो कुछ और है, कर्मों का गुह्य ज्ञान सवेरे सवेरे ईश्वरीय महावाक्यों से मिल जाता है। दूसरी बात, सभी जो ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं और मनुष्य रोज रोज सुने, तुम्हारे मुख से अमृत निकलना चाहिए, पत्थर नहीं। तुम तो सुखदाता बाप के बच्चे हो, तुम सभी को सुख देते चलो, तुम तो बहुत महान हो, तुम्हारे कर्म तो महान होने चाहिए, तुम तो भगवान की संतान हो, तुम्हारा जीवन तो आदर्श होना चाहिए, तुम ही खुश नहीं रहोगे तो कौन खुश रहेगा। रोज मनुष्य ये सुंदर बातें सुने सवेरे, तो उसका जीवन तो बदलेगा ही ना। तो ये हमारे यहाँ रोज हो रहा है, इसलिए यहाँ गाली देना माना एक बहुत बुरी चीज मानी जाती है, बहुत बड़ी, कि इस व्यक्ति की मानसिक स्थिति बिल्कुल खराब है अगर कभी किसी के मुख से अपशब्द निकल जाए। प्राय ऐसा नहीं होता, पर कभी कोई नया व्यक्ति आ गया
तो कभी नहीं सुना, जब से मैं यहाँ आ रहा हूँ।
नहीं, यहाँ बीड़ी सिगरेट की बदबू कहीं दिखाई देगी। तो एक स्वर्ग का सुंदर मॉडल है ये, जहाँ सभी देवकुल की आत्माओं का ये सुंदर मिलन हुआ है, समागम हुआ है, तो उनका देवत्व यहाँ उभर रहा है, जागृत हो रहा है। बस ये कारण है यहाँ के सुंदर माहौल का।
जी, मतलब व्यक्ति यदि अपनी वाणी में परिवर्तन लाना चाहे या जीवन में परिवर्तन लाना चाहे तो यहाँ आ जाए, तो सचमुच ये परिवर्तन बहुत सहज और सरल हो जाएगा।
देखो परिवारों में क्या होता है, मान लो बच्चे ने कुछ गलत शब्द बोला और माँ को बुरा लगा, माँ डांटेगी, ये क्यों बोलते हो तुम, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। अभी डांटने से अब उस पे कई तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। बच्चा ये कहे, मैं तो बोलूंगा, तुम क्या होते हो मुझे समझाने वाली, तुम भी तो बोलती हो, फलाना भी तो बोलता है, पापा भी तो डांटते हैं, मैं भी अब छोटा थोड़ा ही रह गया हूँ, मैं भी करूँगा ऐसा, वो ऐसा रिएक्ट करेगा। तो समझाने का तरीका एक बहुत शालीनता से भरा हुआ, बहुत रॉयल, और जहाँ माहौल ही ऐसा हो कि अगर कोई कुछ बोले तो उसे फील हो समथिंग इज रॉन्ग विद मी, तो ये यहाँ के वातावरण का प्रभाव है। और घरों में भी ऐसा ही वातावरण क्रिएट करना चाहिए।
बिल्कुल, मतलब एक ज्ञान का श्रवण इसमें बहुत मदद कर सकता है, और अंदर की भावनाएं और वृत्ति भी व्यक्ति को चेंज करना होगा, तब शायद वाणी का परिवर्तन होगा। प्रता जी कुछ SMS हमारे पास आए हैं, मैं उनकी ओर आपको लिए चलता हूँ। ये कहती हैं, श्वेता जी ने हमें भेजा है, कहती हैं कि 2 वर्ष से मैं विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हूँ, मेरा 1.5 साल का बेटा है, मैं चाहती हूँ कि अभी से मैं कुछ उसे ऐसा सिखाऊं कि वो पुण्य आत्मा बन जाए। मैं उसकी बुद्धि का भी संपूर्ण विकास चाहती हूँ और मुझे लगता है कि उसकी बुद्धि अभी थोड़ी सी कम है। मैं क्या ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करूँ जो इसमें मैं इस प्रकार के स्पिरिचुअल परिवर्तन ला पाऊँ, उनके अंदर के गुणों और शक्तियों का विकास कर पाऊँ। और कहती हैं कि अमृत वेला बहुत चाहने के बाद भी मेरा मिस हो जाता है, इस विषय पे भी कृपया मुझे प्रकाश दें।
हाँ, परिवार में क्या होता है, पहले तो मैं अमृत वेले की बात पर कुछ चर्चा करूं।
जी,
तो बहुत परिवारों में क्या होता है कि एक दो रूम है, वहीं टीवी रखी है, बच्चे सब लोग वहीं बैठे हैं, रात को 12 बजे तक टीवी देख रहे हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको योग अभ्यास करना है उसको विवश होके वहाँ रहना पड़ता है, क्योंकि और कोई जगह नहीं। कईयों के ये कारण होते हैं, कईयों का ये होता है कि उनके पति या बड़े लोग रात को देर से घर में आते हैं, 11:30 बजे, फिर उनको गर्म करके खाना खिलाना है, फिर सब सफाई धुलाई करनी है, 12:30 एक बज रहा है, तो फिर अमृत वेला मिस हो जाता है। तो अच्छे बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि अपनी दिनचर्या ठीक समय पर पूर्ण कर दें, अधिक से अधिक 11 बजे, बस इससे ज्यादा ठीक नहीं रहता जागना, क्योंकि ये जो 12 के आसपास की नींद है ना, समझो 10:30 से 2:30 बजे तक, ये बहुत गहरी नींद है, देह को स्वस्थ रखने वाली, मन को सुख देने वाली और बिल्कुल बॉडी और ब्रेन को रिलैक्स करने वाली होती है। इसके पहले की नींद भी बहुत अच्छी नहीं और इसके बाद की नींद भी लाइट हो जाती है, इसलिए टाइम पे सो जाने से अमृत वेला अच्छा होगा। फिर भी हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम कंसेशन देना चाहते हैं, लेकिन अगर नहीं होता तो इवनिंग का टाइम भी 6 से 8 के बीच ये 1 घंटा निकाल लें अपने काम काज को ठीक से मैनेज करके, और उसमें योग अभ्यास करें, और सवेरे भी ये करें कि जब ये उठ जाएं अपने मन को उदास न करें कि ये सब मिस हो गया, क्योंकि ये तो सत्य है कि सवेरे सवेरे हमारा प्रभु मिलन होता है और हमारे परम पिता जो निराकार हैं, जो सर्वशक्तिवान हैं, वरदानों के दाता हैं, वो सवेरे ये सब कुछ हमें प्रदान करते हैं। इसलिए दैट इज द मोस्ट, क्या कहूँ मैं, डायमंड लाइक पीरियड इन लाइफ, उसको तो मिस करना नहीं चाहिए। भले कोई ऐसा भी कर सकते हैं कि 4 से 5 जगे, और मान लो 12 बजे ही सोए हैं तो दोबारा सो सकते हैं, बाद में रेस्ट पूरा कर लें।
वो फ्रेशनेस तो शायद नहीं रहेगी।
नहीं, फिर भी अगर एक रूटीन ऐसा बना लिया जाए, इन केस अगर ऐसी परिस्थितियां हैं, तो सवेरे के इस समय को मिस न किया जाए। फिर भी हो रहा है तो जब से उठे, अब व्यक्ति कोई 12 बजे या 12:30 सोएगा तो 6:30 तक तो सोएगा ही, तो उठते ही फिर अच्छा अभ्यास कर लें, अपने को एकदम जागृत करें, फ्रेश करें, कुछ अच्छे गीत सुने, सवेरे का अभ्यास इनके लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए सवेरे उठकर अगर माँ अपने को स्पिरिचुअल पावर से भर ले और फिर बच्चे के सिर पे हाथ भी रख देना, वो छोटा सोया हुआ, तो उसके सुंदर वाइब्रेशंस उसके ब्रेन को डिवाइन करेंगे, एक बात
जी।
दूसरी चीज, अब जब भी ये उठे, इनकी जैसी भी समस्या है, और फिर बच्चे को ये ऐसा 3-4 बार दिन में करे, उसे देखे बहुत प्यार भरी नजर से, इस नजर से कि ये देवकुल की आत्मा मेरे घर में आई है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, जो भगवान ने, शिव बाबा ने एक बहुत अच्छी आत्मा को मेरे घर में भेजा है, इसके आने से मेरे घर में बिल्कुल सुखद फीलिंग हो रही है, सब कुछ सुंदर हो रहा है, हमारे घर का सब माहौल बदल गया है, सबके जीवन जैसे सुखी होते नजर आ रहे हैं, ये संकल्प करें उसको आत्मा देखकर, और फिर रोज ऐसे ही 5-5 मिनट 4-5 बार उसे जस्ट आत्मा देखे, लवफुल फीलिंग के साथ, बिल्कुल लविंग मदर होकर, ओ मेरा प्यारा बच्चा, वैसे कहने की बात नहीं, माँ का चित्त उस टाइम लविंग रहता ही है, तो उसे बहुत अच्छे प्योरिटी के वाइब्रेशंस दे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, यहाँ से पवित्र किरणें गोल्डन निकल कर इस बच्चे पे पड़ रही हैं, पूरे चेहरे पर पड़ रही हैं, ब्रेन पर पड़ रही हैं, 5-5 मिनट, और संकल्प करे ये बहुत श्रेष्ठ बुद्धि से संपन्न हो जाए, इसकी बुद्धि डिवाइन हो, ये बहुत चरित्रवान हो जाए, ये हमारे कुल का नाम रोशन करे, ये देश के काम आ जाए, ये देश में महान कार्य करे, समाज का कल्याण करे, ये सबको सुख दे, ऐसे सुंदर विचार
उनके पास
बैठ के दृष्टि देके, वाइब्रेशंस देके 4-5 बार अगर करेंगे दिन में, मजा आएगा, माँ को मजा आएगा, और बच्चे को तो उसको गोद में रखना ही है, तो उसकी एक ये बहुत सुंदर पालना हो जाएगी, क्योंकि माँ के इस तरह का एक निर्मल प्यार तो हर माँ को बच्चे से होता है, लेकिन क्या होता है, मान लो माँ गुस्से से आई है और बच्चे को गोद में लिया, अब उसके जो वाइब्रेशंस हैं वो उतने अच्छे बच्चे को नहीं
जा कि कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही,
अच्छा नहीं आ रहा। तो माँ को चाहिए ऐसा अभ्यास करे, बस जैसी उसके लिए फीलिंग रखेगी छोटी आयु से। और जिन माताओं को बच्चों ने जन्म लिया वो पहले दिन से ही ऐसी गुड फीलिंग रखने लगे, ऐसे संकल्प उनको देने लगे, तो सचमुच इस देश में महान आत्माओं का जन्म, महान आत्माओं का उत्थान और उससे देश का कल्याण होगा।
जहाँ तक मुझे लगता है डॉक्टर्स भी कहते हैं खान पान का ध्यान रखते हैं, कोई भारी चीजें ना उठाना, इन सब चीजों का तो वो ध्यान रखते हैं, लेकिन ये विचारों की जहाँ तक बात आती है उस पर शायद उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आप कैसी दिनचर्या सजेस्ट करेंगे, उठे तो किस प्रकार के विचार हों, या रात को सोए तो क्या विचार हो, या दिन में भी किस प्रकार के सुंदर विचार वो रखें अपने पास?
देखिए, आजकल हमारे समाज में, हमारी एजुकेशन में ये एक बहुत बड़ी मिसिंग पॉइंट है कि अच्छे विचारों का अभाव हो गया है। अब बच्चे भी हैं अपने कोर्स को पूरा करने में लगे हुए, उनकी ब्रेन की शक्ति भी लग रही, आंखों की शक्ति भी लग रही, तो शरीर की शक्ति भी लग रही है, और कुछ सोचने का जैसे उन्हें बचता ही नहीं है। लेकिन महान विचारों का एक प्रचार प्रसार भी करते हैं, रेडियो वाले भी करते हैं, टीवी वाले भी कहीं ना कहीं करते रहते हैं, पर और ज्यादा करना चाहिए ताकि एक मनुष्य सीखे अच्छे विचार रखना, उसको पता लगे सुंदर विचार जीवन का अनमोल खजाना है, इसको भी हमें अपने पास रखना चाहिए। जैसे हम स्थूल धन कमाने के लिए कितनी भाग दौड़ कर रहे हैं, तो ये कुछ हमारे असली खजाने भी हैं, खुशी शांति सुख प्रेम और ये श्रेष्ठ विचार और दुआएं, इनको बढ़ाना है। तो ऐसी मदर्स को रोज सवेरे थोड़ा जल्दी तो उठना ही चाहिए, चलो 5 बजे तक तो उठ जाएं ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले, और सुंदर अपने परम पिता से मिलन करें, उसे गुड मॉर्निंग करें, उसे मिलन करें। और हमारा जीवन कितना सुंदर है, सवेरे का वातावरण बहुत अच्छा होता है, जरा घर से थोड़ा सा बाहर निकल कर ओ कितनी सुंदर ये सृष्टि है, प्रकृति कितनी सुखदाई है, काश मनुष्य भी ऐसा ही सुखदाई हो जाए, हम तो भगवान की संतान हैं, उसने हमें ये सुंदर जीवन दिया है। एक सुंदर विचारों से शुरुआत करें अपनी दिनचर्या की उठते ही, क्योंकि मनुष्य अगर सवेरे उठ जाए और चाहे उसने ज्ञान लिया हो या न लिया हो, वो आधा घंटा अपने को दे दे, स्वचिंतन में दे दे थोड़ा जल्दी उठकर, तो इसका इफेक्ट बहुत सुंदर आता है। चाहे वो भक्ति करते हैं, चाहे वो पाठ करते हैं, वो सवेरे का आधा घंटा उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा। और केवल वो पाठ न करें, ये संकल्प रखें कि जो कुछ कहा जा रहा है वाणी में या किसी ग्रंथ में, उसको हमें जीवन में लाना है। अगर पाठ करने से इतना सुख मिलता है और अगर वो जीवन में आ जाए तो मनुष्य कितना सुखी हो जाए। तो सवेरे के बाद कामकाज हल्का करें और बहुत अच्छे अभ्यास करते रहें। मैं एक दो अभ्यास सजेस्ट कर देता हूँ, इतना अभ्यास हर व्यक्ति कर सकता है, मैं तो भगवान की संतान हूँ, मैं महान हूँ, मेरे गर्भ में जो आत्मा आ रही वो भी बहुत महान है, मुझे तो सबको सुख देना है क्योंकि मेरा परम पिता सुखदाता है, वो शांति का सागर है, मुझे तो अपना जीवन शांति में व्यतीत करना है, वो प्रेम का सागर है, मुझे भी आज सबको प्रेम बांटना है, मैं एक सुंदर कर्म आज सारे दिन करूंगी, मैं सबको सुख दूंगी, प्यार से व्यवहार करूंगी, अपनी वाणी को बहुत सुंदर सुखदायी और मृदु रखूंगी। ऐसे विचार करते करते दिन में ये अभ्यास करते रहें, मैं एक महान आत्मा हूँ, भगवान की संतान हूँ, मैं श्यान स्वरूप आत्मा हूँ।
तो मैं अपने लिए ये विचार
पहले अपने लिए, इसका इफेक्ट बच्चे पर जाता ही रहेगा। और फिर भोजन खाए, थोड़ा बहुत बनाएगी भी मदद करेगी, इन अच्छे विचारों में भोजन बनाए, मैं तो भगवान की संतान, वो पतित पावन, वो पवित्रता के सागर, मुझे भी पवित्र जीवन व्यतीत करना है, मैं भी परम पवित्र आत्मा हूँ। फिर रात को इस तरह सोते हुए सारा दिन अच्छी फीलिंग में बिताए, कोई बात सामने आ जाए उसको अवॉइड करे ताकि मन इरिटेट न हो, कोई टेंशन न हो, कोई भाग दौड़ न हो, गुस्सा ना आने लगे, इन सब चीजों से थोड़ा बचना है इन दिनों में। और फिर रात को भी अपने परम पिता से गुड नाइट करके अपनी ये सारी दिनचर्या उसके सामने रख के, हम तुम्हारे हैं, आज का सब कुछ तुमको अर्पित, ऐसा करके फिर विश्राम करें।
बिल्कुल बिल्कुल। भ्राता जी, ये अपने लिए विचार हुआ तो ये विचार उस पे भी, जो आने वाला बच्चा उस पे भी प्रभाव डालेगा, या उसके लिए भी हमें कुछ विचार करना है कि ये बच्चा भी ऐसा ही
वो हो। मैंने बता ही दिए हैं, लेकिन पहले अपनी मानसिक स्थिति सुंदर रहे तो वो विचार और इफेक्टिवली काम।
और रात को सोते समय भ्राता जी, आप हमेशा कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है, तो क्या उस समय भी कुछ विशेष मतलब अभ्यास किए जा सकते हैं?
उस टाइम भी अपने बच्चे के लिए सुंदर संकल्प कर लिए जाएं कि मेरा होनहार ये संतान बहुत महान होगी, ये बहुत चरित्रवान सद्बुद्धि से संपन्न महान कार्य करने के लिए भगवान मेरे गर्भ में एक महान आत्मा को भेज रहे हैं, ऐसी फीलिंग बना के, ऐसी विजन बना के।
ऐसे समय पे क्या भ्राता जी, टेलीविजन में या मूवीज में कई हिंसात्मक दृश्य आते हैं, कुछ अश्लील दृश्य आते हैं, तो इस प्रकार के दृश्यों का भी क्या प्रभाव उस आने वाले बच्चे पे पड़ता है?
आने वाले पर भी और जीने वालों पर भी, दोनों पर पड़ता है। जो लोग सोते समय ऐसी मूवीज देख रहे हैं, समझ लें वो जीवन की सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। उनके मन पर उसका गहरा और बुरा निगेटिव असर आता है, जो उन पर भी पड़ता है, उनके अगले दिन को प्रभावित करता है। रात भी उनकी उसी तरह के स्वप्नों में या फीलिंग्स में बीतती है। कई लोगों को स्वप्न नहीं आते, लेकिन वो बैड फीलिंग के साथ सोते हैं। इसलिए उन पर भी और गर्भ में जो संतान आने वाली उस पर भी इन चीजों का इफेक्ट पड़ेगा। इनसे तो हर बुद्धिमान मनुष्य को बचना चाहिए।
बिल्कुल। तो सीरियल आजकल बताते जी इस प्रकार के कई आते रहते हैं जो क्रम से चल रहे हैं, और घर की महिलाएं तो ज्यादातर वो सीरियल देखती हैं, उसमें तो रोना धोना और बहुत सारी इस प्रकार की चीजें होती हैं। क्या सजेस्ट करेंगे, वो चीजें देखें या फिर कुछ ऐसी चीजें देखें जो सचमुच उसके मन को भी सात्विक करें और बच्चे तक भी सात्विकता जाए?
ये हमारे बुद्धिमान पत्रकार या मीडिया वाले या ये चैनल्स वाले गलत भोजन परोस रहे हैं समाज को। उन्हें ये सोचना चाहिए कि जो कुछ वो दिखा रहे हैं उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भावी संतान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ऐसी बुरी चीजों को अवॉइड करना चाहिए देखने वालों को भी। हाँ, सम्राट अशोक दिखा रहे हैं, चंद्रगुप्त दिखाया, महादेव दिखाया, और अच्छे सीरियल आए, श्री कृष्ण का आता है। इन सब से मनुष्य बहुत कुछ सीखता है, अच्छी प्रेरणाएं लेता है, लेकिन ये घरेलू झगड़े, रोज की मारामारी, स्वार्थ, इन सब से मनुष्य कुछ सीखता नहीं है। इसलिए इन सब चीजों से बचना चाहिए, और ऐसी महिलाओं को रात को सोते समय अपना अच्छा कुछ अभ्यास, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके ही सोना चाहिए।
बिल्कुल, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं ज्यादा बच्चे पे पड़ेगा। भ्राता जी, और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं इस विषय पे जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है, अब तक हम लोगों ने इसे छुआ नहीं है, लेकिन कई बार हमारे पास इस प्रकार के प्रश्न आ रहे थे और फोन कॉल आ रहे थे, लेकिन आज वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, बहुत ही गंभीर मैं कहूँगा और बहुत ही चिंतन करने योग्य विषय है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन का निर्माण करते हैं और आने वाली जो संतति है उसका भी निर्माण कर सकते हैं। हम वैसे भी शास्त्रों में ये सुना करते थे, पढ़ा करते थे, और महाभारत वाली बात तो हम सबके सामने बिल्कुल स्पष्ट है कि अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में ही ये सीख लिया था कि कैसे चक्रव्यूह तक को तोड़ना है, बाहर कैसे आना है, ये वो नहीं सुन पाए क्योंकि माँ भी सो गई थी। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि माँ की हर एक एक्टिविटी का प्रभाव बच्चे पे अवश्य पड़ रहा है, क्योंकि वो सीधे सीधे तौर पे उनसे जुड़ा हुआ है। जो वो खा रही हैं, ना केवल उसका प्रभाव, लेकिन मन से भी जो वो खा रही हैं, मन से जो विचार कर रही हैं, उसका भी बहुत गहरा प्रभाव आने वाले बच्चे पर पड़ता है। इसलिए इस विषय पर बहुत गहराई से ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, लगता है कि यदि वहीं से एक अच्छे इंसान के जो बीज हैं, संस्कार है, बच्चे में डाल दिए जाएं, तब जब वो संसार में आएगा तो सचमुच एक दिव्य गुणों से संपन्न होगा, सजा सजाया होगा। और आज की जो स्थिति हम देख रहे हैं, टेंशन वाली स्थिति हो या बहुत सारी क्राइम वाली स्थिति हो, उससे हम समाज को निजात दिला सकते हैं। गहरा प्रश्न है मित्रों, गहरा विचार करने योग्य बात भी है, इसीलिए इस विषय पर आगे भी प्रकाश भ्राता जैसे लेते रहेंगे। आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार।